Okay, Janab, welcome back once again, and we will announce the winners in a bit. Meanwhile, we are going to interview Bollywood singer Pratibha Singh Bagel. She will be live and exclusive all the way from India with us. And to be really honest, I'm really excited since I was told she'll be coming to England on the 22nd of Jan all the way up until the 22nd till the 26th of Jan. She's performing in London. In Umrao Jaan Ada, the musical theatre. Sure, she is the lead actor in that. So I'm really excited for that, even though I will be away at the time. But seriously, I'm really, really excited. I checked out online on the YouTube and stuff, and I was really, really amazed. I would say I was blown away. Right, Pratibha is a playback singer, actor, live performer. She was a top finalist of Saregama Challenge in 2009 and the winner of Shankar Mahadevan Gharana. She has won Lata Mangeshkar Award in 2008, and she has also received National Classical Vocal Award. And I was scrolling Facebook the other day, and she was singing Ghulam Ali's Ghazal, and I was, oh my god, I was blown away. It was, my word, this lady has got some amazing, amazing vocals. Quite recently, she did lend her vocals for Raja Ji, Lagta Ki Adhura Loves Her for the film called Bazaar. She has also sung alongside Rahat Fateh Ali Khan Sahab, Mast Hawa, and this one as well, you know, Jhunna Jhunna. What an amazing, amazing tune this is. She has also performed worldwide from the likes of Singapore, Sri Lanka, Dubai, Turkey, Germany, Thailand, United States, Kenya, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Canada, Tanzania, South Africa, Bangladesh, Italy, and many more. And now, I shall be coming to England. Really, really excited. If you've not checked out the Umrao Jaan Ada, the musical theatre, all you got to do is just type in on YouTube and you can watch this amazing, amazing drama. Meanwhile, I'll try to connect her to Pratibha, and we'll be talking to her career and, of course, some music. So keep it locked to Radio Sangam 107.9 FM. Don't touch that dial. This is your Veer Tanveer.
मुझको मिल गई है, मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है, ओ सारी दुनिया की ने।
ओके जनाब, एक बार फिर से हम आप तमाम को कहते हैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद, और हमारा जो राबता है वो हो चुका है प्रतिभा के साथ, जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो शो में थी और शो को परफॉर्म करके आई हैं अभी, और उनके फौरन बाद, परफॉर्मेंस के फौरन बाद उन्होंने हमें वक्त दिया, तो हम उन्हें वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।
थैंक यू सो मच तनवीर, थैंक यू, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आप सुनाइए कि इंडिया का मौसम कैसा है? मुझे पता है इस वक्त काफी ठंड हो रही होगी, और आप परफॉर्मेंस करके आई हैं, थोड़ी थकी हुई भी होंगी, तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
मैं बिल्कुल थकी हुई नहीं हूँ, म्यूजिक से मैं कभी थकी नहीं हूँ, एंड आई एम सीरियसली वेरी हैप्पी टू ऑन योर शो।
बहुत शुक्रिया, हमने आपका उमराव जान अदा के हवाले से हम बातचीत करेंगे, आप यूके में आने वाली हैं, परफॉर्म करने वाली हैं, कैसी हैं आपकी फीलिंग्स? यूके में पहली बार आ रही हैं या इससे पहले भी आ चुकी हैं?
वुड बी द फर्स्ट टाइम फॉर मी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं यूके नहीं आ पाई थी, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये कुछ खास मैं परफॉर्मेंस के लिए आ रही हूँ। यूजुअली हम अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स के लिए ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास है क्योंकि आई एम प्लेइंग उमराव जान अदा इन लंदन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे वेल विशर्स के फोन आ रहे हैं, एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यूके, तो आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड ईगरली।
प्रतिभा, आपका करियर काफी जबरदस्त किस्म का है। आपने परफॉर्म किया, रियलिटी शो से निकल के आप आई, फाइनलिस्ट रही, वहां पे आपने अवार्ड भी विन किया, लता मंगेशकर जी का अवार्ड विन किया। और ऑल ऑफ अ सडन मैं उस दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, सोशल मीडिया का एज है आजकल, आपको पता है हर चीज सोशल मीडिया पे है, तो आप एक गुलाम अली साहब की गजल गा रही थी, आपके पेज पे थी, तो मैं आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे विद दैट, सीरियसली मैं इतना मेसमराइज हुआ कि मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, कम अज कम मैंने वो 100 दफा सुना होगा वो वीडियो आपका। क्या खूबसूरत अंदाज में आप गा रही थी। ये जो आपकी उमराव जान अदा की ये जो परफॉर्मेंस है, वो आप मुझे पता है कि थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, उसमें गजल भी गाई जाएगी या किस किस्म की होगी, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं जिनको अभी तक इस उमराव जान अदा का ये जो आपका टूर है उसके बारे में नहीं पता, थोड़ा उन्हें भी इस बारे में पता चले।
एक्चुअली उमराव जान अदा में हमारी जो खयाम साहब के जो गाने थे बहुत खूबसूरत गाने थे, वो भी इसमें हमने लिए है, जो कि ऑफकोर्स फिल्मी गजलें आप उन्हें कह सकते हैं। तो वो भी कुछ गाने हैं, जैसे जो चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आंखों की मस्ती के, एंड और भी गाने हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि उमराव जान अदा में गजलों के अलावा एक फोक भी है, जो कि लखनऊ में पहले जिस तरह के फोक होते थे उस टाइम पे, वैसा एक फोक टच दिया गया है। एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम सलीम सुलेमान जी, उन्होंने स्पेशली इस शो के लिए एक गाना कंपोज किया है, हम रहे या ना रहे, बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। वो गजल की तरह से लिखी गई है, बट इट्स अरेंज वेरी ब्यूटिफुली, जो कि आपको आज और उस एरा से दोनों से आपको जोड़ेगा। एंड देन देर इज वन मोर सॉन्ग विच यू कैन से इज अ कवाली। सो आई थिंक वी हैव ऑल द टेक्सचर्स ऑफ ऑल द जॉनर्स ऑफ म्यूजिक इन उमराव जान अदा। सो आई थिंक एक सब चीजों का एक मिश्रण है ये उमराव जान अदा, बट बेसिकली इट्स डेफिनेटली मोर ऑफ गजल थिंग।
सही प्रतिभा, इसमें आपके 4 दिनों में 7 शोज हैं, थक नहीं जाएंगी आप? बड़ी नाजुक दुबली सी लड़की हैं, तो इतनी जबरदस्ती जब परफॉर्मेंस करती हैं, गाती भी हैं, तो थक नहीं जाता बंदा?
मैंने अभी आपको इस बात का जवाब दिया था, मैं म्यूजिक करने से थकती ही नहीं हूँ, और ऊपर से जब ऑडियंस सामने से इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही होती है ना, दैट वी बीइंग वेरी लकी इन दैट वे। बहुत अच्छा, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं म्यूजिक को, जो चाहने वाले लोग होते हैं उनकी वॉर्म्थ आपको मिलती है व्हेन यू आर ऑन स्टेज। आपको यकीन माने आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप थक गए हैं। वी डू 12 hours रिहर्सल्स एंड देन वी डू टेक्निकल फॉर सम 15-20 hours एंड देन उसके अगले दिन हम दो शोज परफॉर्म करते हैं, बट वी ऑलवेज सो चार्ज्ड अप। एंड लोगों से मिलने का इतना मन में इतना उत्साह होता है कि थकने का तो सवाल ही नहीं होता है।
अरे
वाह, कुछ इतना अच्छा आप क्रिएटिव कर रहे हो, एंड इट्स सो स्पॉन्टेनियस दैट यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ म्यूजिक एंड थिंग्स।
क्या बात है प्रतिभा, आप जारी बात है बहुत ज्यादा लाइव सिंगिंग करती हैं। आजकल के दौर में अमूमी तौर पे यही समझा जाता है लाइव सिंगिंग बहुत कम होती जा रही है, ज्यादातर जो लिप सिंक जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ये चीज जब आप करती हैं तो खाने पीने के लिहाज से तो आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा, क्योंकि आवाज जरा सी भी ऊंची नीची हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। तो खाना पीना आप क्या यूजुअल ही करती हैं या बहुत ही मुनासिब सा खाती हैं?
एक्चुअली ट्रैवलिंग के वक्त पे थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि व्हेन यू ट्रैवलिंग टू मच, और इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी कि वेदर बहुत अलग अलग होता है। मुंबई में ठंड कभी पड़ती ही नहीं है, बट मुंबई के अलावा इस वक्त इंडिया में हर जगह ठंड पड़ रही है, तो वो क्लाइमेट का बहुत इशू होता है, तो हमें उसके लिए जरूर ध्यान रखना पड़ता है। वी टेक केयर ऑफ द फ्रूट, थोड़ा गर्म पानी पीते रहते हैं, थोड़ा हनी डालकर एंड जिंजर टी, तो लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अभी मुझे लगता है कि हमने अपने गले को इतना लिया है सो दैट इट्स नॉट वेरी वेरी नाजुक, ताकि सब जगह थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, इस तरह से गले को ढाल लिया है।
सही प्रतिभा, आपने हर तरह का जॉनरा गाया है जिसमें गजल, मैंने जो जितनी भी आपकी यूट्यूब पे, जब मैंने आपको बताया कि गुलाम अली साहब की आपकी गजल सुनी तो वो कमाल थी, फिर जितना भी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मैं तो आपका फैन से बल्कि इतना बड़ा फैन हो चुका हूँ।
बताना चाहती हूँ जरूर
जी
कि गजलें बचपन से ही एक बहुत खूबसूरत शेर है कि बचपन से गजल ही मेरी महबूब रही है, आज चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है।
अरे वाह।
एक्चुअली एक गजल है बहुत खूबसूरत इनकी, हरिहरन साहब की गाई हुई है, कि आज चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। उसका एक शेर है, हो माथे का मतला या होठों के दो मिसरे, बचपन से गजल ही मेरी महबूब रही है।
क्या बात है,
तो
क्या बात है।
मुझे बचपन से ही गजलें गाने का इतना शौक था, मेरे फादर गजलें गाते थे और सुनते थे, ज्यादातर वो मेहदी हसन साहब को सुनते थे और गुलाम अली साहब को सुनते थे, और उनकी वजह से मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया गजलों में। तो मैंने फिर फरीदा खानम साहब को, बेगम अख्तर जी को, परवीन सुल्ताना जी एंड अपने मैडम नूर जहां और मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब तो है ही, तो इन सबको सुन सुन कर इतना गजलों का शौक हो गया कि आई स्टार्टेड लर्निंग गजल, आई स्टार्टेड सिंगिंग गजल। और अभी श्री जी है पाकिस्तान के, हमारे बड़े प्यारे हैं वो, मोहम्मद अली जी हैं, उनके साथ में हमने कई सारे कॉन्सर्ट्स भी किए हैं। रिसेंटली हमने दुबई में कॉन्सर्ट किया था। सो आई फील वेरी लकी दैट इस जॉनरा को गाने का मुझे मौका मिलता है और एक्सप्लोर कर पा रही हूँ मैं। ये मेरा एक मोस्ट फेवरेट जॉनर है म्यूजिक का।
सही। अभी मैं वही जैसे आपको बता रहा था, YouTube पे देखा, जाजिम भाई का हमने इंटरव्यू किया था, जाजिम भाई के साथ हमारी मुलाकात भी हुई थी मैनचेस्टर में, उन्होंने परफॉर्म किया था, उनके साथ भी आपका एक गजल थी, वो मैंने आपकी सुनी थी और क्या कमाल आप वहां पे भी गा रही थी। तो मैं वही पूछने वाला था, क्योंकि गजल बहुत जबरदस्त, आपने फिल्मों में भी बॉलीवुड सिंगिंग भी की, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि यूके में जो है ज्यादातर यही समझा जाता है कि भांगड़ा जो है वो यहाँ का एक पॉपुलर जॉनरा है। भांगड़ा का कोई गाने का इरादा है आने वाले दिनों में, हमको ऐसा नंबर सुनने वाले हैं जो प्रतिभा एक भांगड़ा नंबर करने वाले हैं?
आप बस इंतजार कीजिए, अभी रिसेंटली मैंने एक भांगड़ा गाया है किसी फिल्म में और वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। तो मुझे हर म्यूजिक का कोई भी जॉनर हो, मुझे सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। टिल द टाइम इट्स म्यूजिक आई एम कंप्लीटली इन लव विद एवरी जॉनर। आई लव टू सिंग वेस्टर्न, आई लव टू सिंग भांगड़ा, आई लव टू सिंग बॉलीवुड, बट द मोस्ट फेवरेट जॉनर इज आई।
सही। आपने अभी अपने वालिद का जिक्र भी किया कि आप बचपन से ही, आपके वालिद भी गजल गाते थे, तो घर में बड़ा मौसीकी वाला माहौल था, तो आपके वालिद ही आपके उस्ताद हैं या आपने इसकी बाकायदा जो है इसकी ट्रेनिंग भी कहीं से हासिल की थी, और क्या आपकी मदर भी वो भी गाती हैं?
एक्चुअली घर पे ऐसे म्यूजिक का माहौल तो है नहीं, क्योंकि मेरे जो काका साहिब हैं वो तबला प्लेयर हैं, एंड बट म्यूजिकली प्रोफेशनली जिन्होंने इसको कैरी किया है उनमें से माय काका साहब, मी एंड माय कजिन आर ओनली इनटू म्यूजिक। बाकी पापा बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन ही इज इनटू पुलिस एंड ही इज एन इंस्पेक्टर, लेकिन वो अपना म्यूजिक में करियर नहीं बना सके ड्यू टू सम रीजन। तो आई थिंक उसकी वजह से मुझे ऊपर वाले ने इससे नवाज दिया, तो दैट आई कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर हिम।
सही। क्या बात है, क्या बात है। और प्रतिभा, अब गजल का जिक्र हुआ तो अगर आप हमें थोड़ी सी कुछ गजल सुनाना चाहें, आई नो कि आप परफॉर्म करके आई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो रेडियो के सुनने वाले हैं बहुत से, अभी मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैं वो भी शामिल करूंगा, तो बहुत से लोग जो हैं वो सुनना चाहते हैं आपसे कुछ गजल। और फिर अभी मैंने आपका, मैं जैसे बता रहा था कि बहुत सी चीजें मैंने आपकी जब यूट्यूब पे देखी तो आई वॉज रियली ब्लोन अवे, जिनमें एक झुन्ना झुन्ना आपका एक गाना था वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत डिफरेंट अंदाज में आपने गाया और बड़ा ही कमाल गाया है, तो अगर आप थोड़ी सी हमें गजल सुना दें, देन ऑफ कोर्स मेरे पास कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं वो भी फिर शामिल करूंगा।
यस यस। तो मैं आपको एक ये उमराव जान अदा कर दे, एक
जी जी
रिसेंटली प्लीज हमने किया है, वो ही मैं आपको सुना देती हूँ।
जी।
ये तड़प नहीं जो मरे अब चाहे जो आना मरे इश्क में हो तेरा हाँ ये जहाँ बरहम है हम रहे यादा रहे इश्क तो कायम रहे।
पाप, क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत खूब। और मेरे पास अब कुछ सवाल भी आ चुके हैं तो मैं चाहूंगा वो भी शामिल करूं। नवीद भाई का यहाँ पे सवाल आया, प्रतिभा, वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने डुएट किया है राहत फतेह अली खान साहब के साथ भी किया है, दिव्या कुमार के साथ और अकृति कक्कर के साथ भी आप गा चुकी हैं, जावेद बशीर साहब के साथ और नूरा सिस्टर के साथ भी गाया, तो आपको अकेला किस तरह से कम्फर्टेबल फील करती हैं? ये उनका सवाल है कि अगर डुएट गाती हैं वो कम्फर्टेबल हैं या जब आप अकेले गाती हैं तो कम्फर्टेबल होती हैं?
वैसे तो मुझे हर तरह से गाना पसंद है, लेकिन डुएट में एक बात होती है दैट यू हैव टू स्टिक टू वन स्केल, बिकॉज एक फीमेल रेंज अलग होती है और मेल का स्केल अलग होता है। लेकिन जब इट कम्स टू डुएट, तो डुएट में क्या होता है कि आपको एक कॉमन स्केल में दोनों को सेटल होना पड़ता है। तो जो राहत साहब वाला गाना था जो मैंने अधूरा लव बाजार फिल्म के लिए गाया था, उसमें क्योंकि ऑफकोर्स हम सब राहत साहब का गाना बहुत एडमायर करते हैं, वो बहुत ही कमाल के सिंगर हैं, तो उनके हिसाब से एक स्केल, क्योंकि उनका एक डिफरेंट स्टाइल है गाने का, तो उनके हिसाब से जो एक स्केल सेट की गई थी उसमें आई हैड टू सम रॉ आई हैड टू एडजस्ट विद दैट स्केल। तो मुझे लो पिच पे गाना था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी टू एक्सप्लोर दैट स्केल ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक सुहेल सेन जिन्होंने ये कंपोज किया है उन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुली इसे संवार दिया है मेरी आवाज को, उस स्केल में भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो एंड जावेद बशीर जी के साथ में भी यही हुआ था, जो मैंने बॉलीवुड डायरीज के लिए गाया था, विपिन पत्रा जी का म्यूजिक था उसमें, तो उसमें भी यही है कि जब आप ड्यूएट सुनते हैं कोई, तो दैट इज नॉट योर योर ओरिजिनल स्केल, लाइक इट इज मे बी अ कॉम्प्रोमाइज फॉर बोथ ऑफ द सिंगर्स, क्योंकि दोनों को एक पर्टिकुलर स्केल पे सेटल होना पड़ता है। और सिंगिंग अलोन इज ऑलवेज योर थिंग, बिकॉज यू कैन चूज वॉट एवर स्केल यू वॉन्ट, वॉट एवर यू आर कम्फर्टेबल विथ, तो लेकिन ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू आर अ सिंगर, यू हैव टू एक्सप्लोर एवरी स्केल एंड यू शुड बी हैप्पी विद एवरी जॉनर एंड एवरी यू नो यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ।
जबरदस्त। यहाँ पे परमजीत साहब कह रहे हैं कि वो आपके बहुत बड़े फैन हैं और वो कह रहे हैं कि आपको खुशामदीद कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं वेलकम कि आपने हरिसफील्ड का जो रेडियो संगम है उसको टाइम दिया। तो परमजीत भाई का ये सवाल है, वो ये आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने एक उमराव जान अदा के लिए ही दिल चीज क्या है का जो आपका म्यूजिकल थिएटर वो किया था, तो कह रहे हैं कि जब आप वो उसमें परफॉर्म कर रही होती हैं तब भी आप लाइव गा रही होती हैं, ये उनका सवाल है परमजीत का।
ओहो, ये तो बहुत अच्छा सवाल है और मैं सबको बताना चाहती हूँ, करण जी, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस। ये एब्सोल्युटली आप उमराव जान अदा में अगर एक भी लाइन कोई गा रहा है दैट इज कम्प्लीटली लाइव, एब्सोल्युटली लाइव, और उसमें सिर्फ गाना ही लाइव नहीं गा रहे हैं, उसमें म्यूजिक भी लाइव है, ओनली द बैकग्राउंड हैज बीन रिकॉर्डेड, दैट्स ऑल, बट जो भी हम लाइव गा रहे हैं वो सब लाइव म्यूजिशियंस भी हैं वहाँ पर, वी आर एब्सोल्युटली सिंगिंग लाइव, वेदर इट्स दिल चीज और हम रंगिया ना रहे हैं और आंखों की मस्ती के और एनीथिंग, सो वहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स गा रहे हैं एवरीबॉडी इज सिंगिंग लाइव।
यहाँ पे विशाल का हमारे पास एक सवाल है, विशाल भी यही कह रहे हैं कि वो भी आपके बहुत बहुत बड़े फैन हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि उमराव जान अदा जो है वो नॉर्थ वेस्ट में क्यों नहीं आप लेके आ रही हैं, सिर्फ लंदन में ही क्यों कर रही हैं?
हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में इसे लेकर जाएं और शुरुआत है, हम इंशाल्लाह वहां भी आएंगे जहां आप कह रहे हैं।
वो हमारा नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, लंदन यहाँ से करीबन 5 घंटे दूर है, तो नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, लंदन जो है वो साउथ ऑफ इंग्लैंड है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि इस तरफ क्यों नहीं आप कर रहे, यहाँ से हमें 5 घंटे ट्रेवल करके जाना पड़ता, तो अगर आप यहाँ पे भी शो करती तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती, वो ये कह रहे हैं।
देखिए मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि हम आपके लिए यहाँ इतनी 7 समंदर पार करके लंदन आएंगे, आप प्लीज हमारे लिए 5 घंटे प्लीज आ जाइए आप क्रॉस करके, हमें बड़ा अच्छा लगेगा।
अरे
वी आर कमिंग फ्रॉम ऑल द वे यहाँ, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, तो आप प्लीज यहाँ आएंगे तो वहाँ सेटलर वेल्स में आएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा।
बिल्कुल, विशाल जी ने वापस थम्स अप किया कि वो डेफिनेटली जाने वाले हैं। सही मंसारी इस वक्त आपको इंडिया कश्मीर में सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे कि उमराव जान अदा के जितने भी आपने म्यूजिकल थिएटर में गाने किए हैं आपका अपना दिल के करीब कौन सा गीत है?
मुझे आई थिंक मैंने जब से ये उमराव जान फिल्म भी देखी थी रेखा जी वाली, तो मुझे हमेशा से दिल चीज क्या है आप मेरे जान लीजिए ये बहुत पसंद था। और उसमें एक और गाना है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिस जो जिसकी थी उसको तो नाया हमने, तो ये दोनों गाने मेरे फेवरेट हैं। एंड नाउ द थर्ड सॉन्ग विच हैज बिकम माय फेवरेट इज हम रहे अदा रहे, विच इज बीन कंपोज बाय सलीम सुलेमान जी। तो हालांकि एवरी सॉन्ग इज ब्यूटिफुल, लेकिन ये तीन गाने मेरे फेवरेट हैं।
रीनू जी, रीनू शर्मा जी आपको सुन रही है ब्रैडफोर्ड में, वो भी आपकी आवाज को, आपके काम को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, तो वो पूछ रही है कि आपका जो ड्रेस डिजाइनर है उमराव जानदा में वो कौन है, कह रही है उसका नंबर ही दे दें जरा, मैंने भी वैसे कपड़े बनवाने हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, आपको उनका नंबर भेज दिया जाएगा। उनका नाम है वैसे प्राजक्ता गोरे एंड बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कपड़े डिजाइन किए हैं और वो हमारे साथ आने भी वाली हैं इंग्लैंड, तो प्लीज आप आइए और उनसे रूबरू होकर आप बिल्कुल चाहे तो एक एक आपके लिए हम बनवा कर लाएंगे और आप वही ले जाइएगा।
शबनम जी आपको हडर्सफील्ड में सुन रही हैं, शबनम जी पूछ रही हैं आपसे, कहती हैं कि आपने बहुत सी गजलें गाई होंगी, आपकी अपनी फेवरेट गजल कौन सी है?
मेरी गजलों के मामले में मैं थोड़ी बायस, जो मुझे हर गजल बहुत पसंद है, मतलब इस गजलों का एक चाहे कोई भी गजल हो बस गजल होनी चाहिए। मेहदी हसन साहब की सारी गजलें मुझे बहुत पसंद है, मैडम नूर जहाँ की रिसेंटली जो मेरी फेवरेट है वो है नियत शौक, मैडम नूर जहाँ की गजल है वो मुझे बहुत पसंद है।
तो अगर पसंद है तो फिर सुनानी भी तो पड़ेगी ना जी।
100% सुनाइए
जी प्लीज।
नियत शौक भर न जाए कहीं,
अरे वाह,
नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न
अमेजिंग। वाओ, क्या जबरदस्त अंदाज है आपका। और यहाँ पे हमारे पास सवालों का जो है वो तांता बन चुका है, इतने ज्यादा सवालात आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा जो सवालात हैं वो आपसे पूछे जाएं। गुलजार साहब यहाँ पे पूछने कह रहे हैं कि आप, मैंने जब उनको इंट्रो में बताया था कि आप एक रियलिटी शो से आए थे, तो वो उनका सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि रियलिटी शो की वजह से, क्योंकि आप रियलिटी शो में बहुत सी आपको जॉनर्स गाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेस भी होती है, तो क्या आप समझती हैं कि रियलिटी शो में आपकी परफॉर्मेंस की वजह से या वहां से आने की वजह से आप एक बेहतर सिंगर बनी है, या आप समझती हैं कि अगर वो ना होता, ये उनका सवाल है कि अगर वो ना होता तब भी आप बेहतर गा सकती थी?
देखिए, सिंगर तो कहीं जाने आने से नहीं अच्छा होता है, मुझे ये मेरा पर्सनल व्यू है कि सिंगर तो अच्छा तभी होता है जब वो रियाज करते हैं या भगवान ने उनको उससे उसे ब्लेस किया है म्यूजिक से। सबसे पहली बात तो अगर ऊपर वाले ने आपको नवाजा है म्यूजिक से तो वो ही आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और उसके बाद में अच्छा सिंगर बनने के लिए आप रियलिटी शो में जाएं या ना जाएं उससे कोई इसका ताल्लुक ही नहीं है। आप अच्छा गाते हैं तो आप रियलिटी शो में नहीं है फिर भी आप अपना करियर म्यूजिक में बना सकते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो लोग कभी भी रियलिटी शो में नहीं है, बट दे आर सिंगिंग एज गुड एज मतलब एनी रियलिटी शो सिंगर। एंड इन फैक्ट अभी ऐसा हो रहा है कि लोग रियलिटी शो में जाने से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं अपना खुद का कंटेंट रिलीज करने में, क्योंकि अभी ये जो डिजिटल मीडिया है वो इतना स्ट्रांग हो गया है दैट नाउ पीपल, पहले वो इसलिए होता था रियलिटी शो का इतना क्रेज क्योंकि तब लोगों के पास में इतने मीडियम्स नहीं थे लोगों तक अपना म्यूजिक पहुंचाने के लिए।
बिल्कुल,
लेकिन अभी एवरीबडी हैज यूट्यूब, एवरीबडी कैन मेक देयर अकाउंट एंड यू नो डिजिटल मीडिया इज नो स्ट्रांग दीज डेज। फेसबुक पे आप एक कुछ अच्छा कंटेंट डाल देते हैं तो इट रीचेस मिलियन पीपल।
सही प्रतिभा,
तो इतना मुझे लगता है कि अच्छा गाने से किसी रियलिटी शो का कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा गाना अच्छा ही होता है चाहे वो रियलिटी शो में जाए या ना जाए।
क्या बात है, जबरदस्त। प्रतिभा, हमारे पास नितिन का सवाल है, वो कहते हैं कि आपको इंस्ट्रूमेंट भी बजाती हैं या सिर्फ सिंगिंग करती हैं?
आई विश कि मैं कुछ ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बजा सकती, लेकिन मैं सिर्फ तानपुरा और हारमोनियम बजा पाती हूँ. हारमोनियम भी बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि गजलें गाने के लिए थोड़ा हारमोनियम का सहारा मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है गाने के लिए, तो मैं कुछ कॉर्ड बजा के गा लेती हूँ. लेकिन ऐसे तो मैं सैडली मैं कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे नहीं प्ले कर पाती हूँ अपार्ट फ्रॉम तानपुरा और हारमोनियम.
सही. सिमरनजीत का यहाँ पे सवाल है, वो आपसे पूछ रही है कि ऐसा कोई सिंगर जिसके साथ आप डुएट गाना चाहती हो.
डुएट गाना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं, मेरी लिस्ट बहुत लंबी है. और मेरा मतलब जो सपना है वो सपना ही रह गया है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मेहंदी संताप की फैन हूँ और हमेशा रहूंगी और पहले से ही थी. तो मुझे लगता था कि काश मैं उनके साथ कुछ गा पाती, लेकिन वो जहाँ भी हैं बेहतर जगह पे हैं. एंड लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जिनके साथ मुझे, इनफैक्ट मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ, मुझे सबके साथ जाना है.
सही. मोहनलाल जी का यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आया. मोहनलाल जी कहते हैं कि राजा जी आपका एक गीत है, उनको बहुत ज्यादा पसंद है, वो इस गीत की फरमाइश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप प्लीज उनके लिए, मोहनलाल जी के लिए, अगर उसका कोई अंतरा या स्थाई सुनाना चाहें.
मोहनलाल जी थैंक यू. ये गाना शंकराचार्य सर का कंपोज किया हुआ है एंड दिस इज फ्रॉम मणिकर्णिका, तो मैं आपके लिए जरूर गाना गा लेती हूँ. राजा जी मैं नाच गल खोर राजा जी, ओ राजा जी, ओ महाराजा जी मैं नाच गल खोर राजा जी, मन की रंजन चुप ना पाए खनक खनक खनके नाना, बड़ी जब वो रीत गीत की बिन बोले कब कुछ कहना, कुन कुन सी भूख बिखरी जाए रे मनवा को खूब दौड़ाए रे, ओ राजा जी मैना है कित चोर राजा जी.
वाह,
थैंक यू.
क्या बात है, क्या बात है जी. यहाँ पे एक और सवाल है और ये मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनकी तरफ से ये आखिरी होगा सवाल, फिर हमारे पास मजीद 13 मिनट होंगे जिसमें हम क्विकली क्विकली आपके साथ दो चार मजीद कुछ और सवालात करेंगे और आपसे कुछ गीत सुनेंगे. तो राहील भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम दुबई, वो आपको दुबई में सुन रहे हैं, कह रहे हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके कॉन्सर्ट्स में भी अक्सर जाता रहता हूँ जब कभी भी आप दुबई में परफॉर्म करती हैं. तो वो ये कह रही हैं कि आपसे मुझे एक गिला है कि आप फेसबुक पे वीडियोज अपने जरूर डालती हैं लेकिन लाइव इंटरेक्शन अपने फैन के साथ नहीं करती, तो क्या ऐसा कोई इरादा है लाइव इंटरेक्शन का, अगर है तो प्लीज बता दें.
नहीं, I want to say this, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने फैंस और अपने ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट करना, लेकिन बहुत अरसा हो गया है जब से मैं लाइव गई हूँ और मैं नहीं कर पाती हूँ अगर लाइव इंटरेक्शन, तो मैं एक वीडियो डाल देती हूँ, लेकिन ये मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. मुझे बहुत जल्दी एक लाइव सेशन करना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो आपका ये थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मी. मैं जरूर ये अभी थोड़ा ज्यादा ऑफन करूंगी.
सही. प्रतिभा, हमारे पास बहुत से सवालात जो हैं वो आपके सोशल मीडिया डिटेल्स के हवाले से हैं, लोग चाहते हैं काफी चीजें जो हैं लोगों को शायद पता नहीं चलती, तो अगर आप प्लीज अपनी सोशल मीडिया डिटेल्स बता दें, अगर आपका फैन पेज है, अगर आपका इंस्टाग्राम पेज है, अगर आपका ट्विटर अकाउंट है, ताकि ये जितने भी फैंस हैं, जैसे अभी आपने कहा भी कि आप इंटरेक्ट भी करेंगी, तो ऑफकोर्स दीज पीपल वॉन्ट टू इंटरेक्ट लाइव विद यू, तो अगर आप प्लीज अपनी सोशल मीडिया डिटेल्स, अपने फैन पेज बताना चाहें.
मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है प्रतिभा सिंह और फेसबुक पे मेरा पेज है प्रतिभा सिंह बघेल के नाम से एंड ट्विटर में है आई प्रतिभा सिंह. तो आप मुझे हर जगह इन तीनों जगह पे ही हूँ इंस्टाग्राम में, और इसके अलावा मैं किसी सोशल मीडिया में नहीं हूँ, तो यही तीन जगहें हैं जहाँ पर मैं हूँ, तो आप मुझे वहाँ जरूर जुड़े और प्लीज बी कनेक्टेड.
सही. अच्छा, अब हम दोबारा वापस चलते हैं उमराव जान अदा के हवाले से, जो कि आपका 22 तारीख से 26 तारीख को लंदन में होने वाला है, और उस हवाले से आपके साथ शोज होने वाले हैं जितने भी हमारे सुनने वाले हैं. अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्रतिभा लाइव परफॉर्म करने वाली हैं लंदन में 22 से 26 जनवरी को, और इस हवाले से हम इनसे एक पोस्टर लेके हम अपना जो फेसबुक का पेज है रेडियो संगम का उस पर भी डाल देंगे, एंड ऑफकोर्स ऑल द डिटेल्स आपको इनकी सोशल मीडिया पेज से भी मिल जाएंगी. हमें इस हवाले से बताइएगा, जितनी डिटेल्स आप इस शो के हवाले से हमें बता सकती हैं, हमारे फैंस को, हमारे सुनने वालों को भी, अपने फैंस को भी बताइए कि इस दफा क्या क्या नया जो इमराव जान अदा में आपकी जो परफॉर्मेंसेस वो तो हैं, कुछ नया अगर इस परफॉर्मेंस में होने वाला है तो वो भी अगर जितना आप रिवील कर सकती हैं वो अगर आप रिवील करना चाहें तो हमारे सुनने वालों को बहुत खुशी होगी कि हम ये भी प्रतिभा ये भी परफॉर्म करने वाली हैं उसमें।
एक्चुअली मेरे लिए उमराव जान अदा में एक सबसे बड़ा टास्क था डांस करना, दैट टू कथक। कथक बहुत ही मतलब एक इंडियन क्लासिकल डांस का हमारे इंडिया का एक मतलब बहुत ही डिफिकल्ट बट बहुत लक फॉर्म है, बहुत ग्रेसफुल डांस फॉर्म है कथक तो, और बहुत मुश्किल भी है उसके लिए, लोग सालों साधना करते हैं तब जाकर आप वो सीख पाते हैं अच्छी तरह। लेकिन मैं सिंगर हूँ इसलिए मुझे कास्ट कर लिया गया इसमें, लेकिन मुझे नहीं पता था उसके बाद वो मुझे इतना नचाएंगे तो मुझे कथक सीखना पड़ा इसके लिए, और अभी भी मैं इनफैक्ट हर रोज मैं उसके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करती हूँ, और उसके अंदर मैं लाइव सिंगिंग के साथ साथ मुझे कथक भी करना होता है और एक्टिंग तो है ही। उसके अलावा आपको बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे इसमें, थोड़ी कॉमेडी भी है जो हमारे एक किरदार है मुस्तफा नाम है उनका जो कि नवाब साहब के खादिम है, तो उनका एक बहुत ही फनी कैरेक्टर है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा इस प्ले में जो सबसे ज्यादा खास बात है वो यही है कि इसमें लाइव म्यूजिक है, लाइव सिंगिंग तो कई जगह पर होती भी है लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली लाइव विद द म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियंस के साथ में लाइव गा रहे हैं, देन लाइव डांस और एक्टिंग हो रही है, देन उसके बाद यू कैन सी ब्रिलियंट सेट ऑफ पीपल वर्किंग बिहाइंड इट, जो लोग इतना ब्यूटिफुली शो को रखते हैं, जो एक्चुअली द स्टार्स हैं शो के, जो सामने कभी नहीं होते हैं लेकिन वो हर वक्त हमारे पीछे हमें स्टेज में भेजने के लिए तैयार कर रहे होते हैं सब चीजें। देन लाइफ सेट चेंजिंग है, वो मतलब अभी एक ही पल में, अभी वो कूठा आंगन था, अभी एक ही पल में वो बन जाता है जंगल बन जाता है, एक ही पल में वो कुछ और बन जाता है, एक ही पल में वो उनका बन जाता है रहाइश, उनका बेडरूम बन जाता है। तो ये सब चीजें लाइव एलिमेंट्स जो है, लाइव सेट चेंजिंग है, देन सम ब्यूटीफुल ग्राफिक्स दे आर बिल्डिंग, तो आई थिंक सब चीजें ही इसमें कुछ नई है, तो बहुत मजा आएगा सबको देखने के लिए। और ज्यादा बता दूंगी तो फिर आप सब जान जाएंगे,
बिल्कुल
तो फिर आप आएंगे ही क्यों।
हाँ बिल्कुल, जितना हम बता सकते थे हमने उतना बता दिया, मैंने कहा जितना हम बता सकते थे उतना हमने बता दिया, और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको स्टेज। हाँ सर, प्रतिभा आपने बहुत से गाने गाए हैं, आप क्या शायरी भी करती हैं? क्योंकि गजल जो सिंग करते हैं उनको शायरी से बहुत शौक होता है, तो कोई लाइंस खुद भी आप लिखती हैं?
मुझे अंदर से तो मुझे लगता है कि मैं लिख सकती हूँ और मैंने इनफैक्ट एक दो गाने लिखे भी हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मैं इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि स्केड्यूल अभी अलाउ नहीं करता है, लेकिन मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि मैं इस पे भी ध्यान दूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना भी बहुत पसंद है, लेकिन अभी तक इतना मैंने कोशिश किया नहीं है लिखने के लिए।
तो क्या आप, अगर आपने पढ़ने के हवाले से कहा तो क्या पढ़ती हैं, डाइजेस्ट पढ़ती हैं, नॉवल पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं आप?
मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है गजलें पढ़ना, जो ये गजलों की बुक्स
पोएट्री पोएट्री पढ़ना,
या आप कह लें कि मुझे नेट पे बहुत, हाँ पोएट्री पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और उसके अलावा नॉवेल्स ऑफ कोर्स हम पढ़ते ही हैं, मतलब वो तो एक आई थिंक एक बहुत ही अहम हिस्सा है हम लोगों का आम जिंदगी में। ट्रैवलिंग इतनी होती है कि ट्रैवलिंग के वक्त आपके पास कुछ काम नहीं होता, इधर यू लिसन टू म्यूजिक और यू रीड अ नॉवेल, तो इस तरह नॉवेल तो एक अपनी जिंदगी का हिस्सा ही है।
अभी हमारे पास 7 मिनट हैं तो मैं आपकी जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता हूं, तो प्रतिभा क्या आप जब बचपन में आप शरारती बच्ची हुआ करती थी या बड़ी बिल्कुल क्या उसे कहते हैं कि शरीफ नहीं कह सकता, मैं कहता हूं कि मासूम सी खामोश सी बच्ची हुआ करती थी या बहुत ज्यादा शरारती नटखट थी आप?
ओहो, ये तो मेरी, अगर आपने ये मेरी मॉम को पूछा होता ये सवाल तो 6-10 मतलब वो मुझे लगता है कि मैं एक अपने 2-3 भाई बहनों में से मुझे सबसे ज्यादा डांट और मार पड़ती थी, क्योंकि मैं, मुझे ऐसा कहती थी मेरी मॉम कि तुम्हें बिना मार खाए नींद ही नहीं आती है तो मैं बहुत ज्यादा शरारती थी, और मुझे ऑलमोस्ट हर रोज एक थप्पड़ खाना होता था किसी ना किसी काम की वजह से, तो बहुत चलाती थी. लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक एवरीबडी यूज टू लव मी, क्योंकि मैं सिंसियर भी थी. शरारती तो हर बच्चा होता है, लेकिन मैं सिंसियर भी थी अपने काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, म्यूजिक को लेकर.
अपने बहनों भाइयों का जिक्र किया, तो बहनों भाइयों में से किसके ज्यादा क्लोज हैं, और उनको सताती भी थी आप, उनसे शरारतें भी करती थी?
मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है, और इनफैक्ट मैं दोनों के बहुत क्लोज हूँ, दोनों बहुत प्यारे हैं. लेकिन अभी फिलहाल मैं और मेरा भाई साथ ही रहते हैं, मतलब मेरा भाई हमारे साथ ही रहते हैं, तो उसके ज्यादा मैं क्लोज हो गई हूँ. और दीदी अभी एक तो टीचर है तो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन हम जब साथ होते हैं तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि किसके ज्यादा क्लोज है.
अच्छा ये बताइएगा, आप पढ़ाकू बच्ची हुआ करती थी या मेरी तरह रहती थी, नालायक बच्ची थी आप?
मैं तो बहुत स्मार्टी पढ़ी. मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, मैं पढ़ाई करती थी और मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, और मैं अपने क्लास में हमेशा मुझे आगे रहना पसंद होता था कि कुछ भी है तो मैं उसको अच्छी तरह कर लेती थी. और I was a good student.
अच्छा हमारे पास अब वक्त बहुत कम है, मैं बहुत सी बातें आपके साथ करना चाहता था, लेकिन उम्मीद है कि जब आप यूके में आएंगी और अगर आपका नॉर्थ वेस्ट का चक्कर लगा तो डेफिनेटली हम आपको अपने स्टूडियोज में बुलाएंगे और आपसे ढेरों बातें करेंगे. मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है जो मैं अभी जब से मैंने सुना है यूट्यूब पे, मैं कम अज कम उसे 100 बार सुन चुका हूँ. अगर आप वो प्लीज मुझे सुना दें तो मेरे, वो क्या कहते हैं, मेरे लिए क्रिसमस का वो गिफ्ट हो जाएगा आपकी तरफ से, माना कि हम यार नहीं.
Oh, I love that song. I did a cover of this song also.
मैं वही आपका ही सुना था ना, आपका ही सुन के तो मेरा वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया.
अच्छा मेरा ही सुनकर आपको.
जी जी.
ओके तो मैं आपके लिए जरूर ये गा देती हूँ, स्पेशली फॉर यू तन्वी जी.
बहुत शुक्रिया.
माना के हम यार नहीं, प्यार नहीं, माना कि हम यार नहीं, रोते हैं कि प्यार नहीं, फिर भी नहीं, माना कि हम
Amazing. Wow. Thank you very much. आपका बहुत शुक्रिया प्रतिभा. आप एज एन इंडियन आर्टिस्ट, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे सुनने वाले बहुत सी डिफरेंट कम्युनिटी से हैं लोग, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, श्रीलंका से हैं. एज एन इंडियन आर्टिस्ट हमारे रेडियो संगम के सुनने वालों को आपका क्या मैसेज होगा?
सभी लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग अलग अलग कंट्रीज से, और आई रियली लव यू ऑल एंड प्लीज कीप लिसनिंग टू मी, प्लीज लिसनिंग टू गुड म्यूजिक, और मुझसे जरूर जुड़े रहें क्योंकि मेरे लिए मेरी ऑडियंस ही सब कुछ है. तो प्लीज मुझे इसी तरह से प्यार करते रहिए और अच्छा म्यूजिक सुनते रहिए.
थैंक यू वेरी मच प्रतिभा, और हम आपको विश करते हैं कि आपका ये जो अमराव जाना दा का प्रोजेक्ट है यूके में बहुत जबरदस्त और सक्सेसफुल जाएगा, और जब अगली बार आप यूके में आएंगी तो वो डेफिनेटली एक नॉर्थ वेस्ट में भी आप शो लेके आएंगी, जो कि हम हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट में बसने वाले लोग हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव ट्रीट होगी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
100% थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.
बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.
थैंक यू
अल्लाह हाफिज. और हमारे साथ मौजूद थी प्रतिभा ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, और बहुत जबरदस्ती उनके साथ गुफ्तगू रही, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम को भी ये एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन बहुत ज्यादा पसंद आई होगी. पॉडकास्ट पे अवेलेबल होगी, इसके अलावा यूट्यूब पे, और इसके अलावा हमारा जो फेसबुक का पेज है उस पर तो ये अवेलेबल है. बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का.